आपस में लोग बातचीत करते थे और जब भरत जी सब सुनते थे, ऐसे उनको गहर वृत्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सुन रहे थे कि क्या क्या ये लोग कह रहे हैं। वो बहुत प्रसन्न हुए। अथते एनम अनवद्य लक्षणम, अनवद्य मतलब निर्दोष। आज भी जो बकरा खाने वाले हैं तो भद्रकाली को बकरा अर्पित करते हैं तो बकरा का काम देखते हैं, सब कुछ एक बाना होना चाहिए और अंग कटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसको अनवद्य लक्षण करते। तो उन लोगों ने सोचा कि इससे हमारे स्वामी का काम हो जाएगा, भर्तृ कर्म निष्पत्ति मन में माना, इससे हमारे स्वामी का काम हो जाएगा। आखिर बलि देना है किसी की दे, कोई लिखा तो है नहीं कि उसी की बलि दे, किसी की बलि देंगे उनको संतान प्राप्त होगी, हमारे स्वामी का काम हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले घेर करके उनको बांधने लगे। क्योंकि एक बार भाग चुका था दूसरा भी मनुष्य, इसलिए अब दुगुना सावधानी के साथ बांध रहे हैं। वो तो कमजोर व्यक्ति था, वो भाग गया, ये तो बैल जैसा मजबूत है, ये तो और भाग सकता है, इसलिए खूब बांधे। बद्धवा रसनया, रसना के द्वारा बांधे और बांध करके चंडिका गृहम उपनी लिए, चंडिका भवन की ओर चले। चंडिका भद्रकाली के गृह की ओर, मंदिर की ओर ले चले। मुदा विकसित बदना बहुत प्रसन्न हो गए, पहले तो बहुत हैरान हुए थे, लेकिन अब जब जब भरत जी मिल गए तो विकसित बदना, उनका मुख उनका चेहरा खिल गया आनंद से, ये अब हमारे स्वामी का काम होगा और इतना मांस निकलेगा कि इतना तो हम लोग खा भी नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे राक्षस इस दुनिया में है और खून निकलेगा, उसे पिएंगे गरम गरम। खून और मांस खाने वाले निश्चित राक्षस है, राक्षसों का आहार हो। ले चल विकसित बदना, प्रसन्न हो गए, बदन विकसित हो गए, खिल गए। ले गए काली जी के मंदिर में और जितने भी चोर वहां थे सब गा बजा रहे थे, खूब फेस्टिवल चल रहा था। वो गांव से दूर था मंदिर, लेकिन वो सब चोर थे वहां पर गा बजा रहे थे। आज कुछ पुआ पूरी भी पका करके ले गए थे और बहुत प्रकार के सामान खाएंगे पिएंगे, नाच गान हो रहा था। तो ले गए तो स्व विधिना अपनी विधि से पहले इनको स्नान कराए, जिसके बलि देते हैं बकरा हो या आदमी हो पहले उसकी पूजा करते हैं। ये भी एक अजीब ढंग है, इसीलिए यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्व विधिना नॉट शास्त्र विधिना, शास्त्र विधि से नहीं अपनी विधि से। तो उनकी अपनी विधि होती है, पता नहीं क्या क्या विधि उनकी। अपनी विधि सबसे पहले स्नान कराए और स्नान करा करके लाल कपड़ा जो अभी नया नया था, अहते न जो हत नहीं था, जिसमें सिकुड़न नहीं थी, उसको ओढ़ाया। उनको स्नान करा करके और लाल कपड़ा ओढ़ाए, वाससा आच्छाद्य पहनाए नहीं, आच्छाद्य का अर्थ है उड़ा दिए, केवल मुख भर दिखाई पड़ता और बैठा दिए। इसके बाद भूषण गहना उनके शरीर में धारण कराए, जान मारने के बाद फिर ले लेंगे, पूजा कर रहे सत्कार कर रहे बलि का बकरा। तो भूषण धारण कराए और आलेप चंदन माला तिलक, माला पहनाए तिलक दिए, बहुत आदर कर रहे ऐसे करके। और इसके बाद खिलाए, जो भी वो डालडा में पकाया हुआ पुआ लाए होंगे वो खिलाए, कुछ भी किए वो ला करके खिलाए। भुक्तवंतम, जब खाने को दिए तो खा लिए, जितना भी खाने को दिए हुए वे खाए। भुक्तवंतम धूप दीप माल्य लाज कुशले अंकुर, इसके बाद आरती किए उनकी धूप तो आरती कर रहे थे, घंटा बजा रहे थे, शंख बजा रहे थे, आरती किए और धूप मतलब अगरबत्ती पहले दिखाए, इसके बाद दीप, आरती किए, माला पहनाए और लावा किसले अंकुर फल फूल सब उसके ऊपर छिड़क रहे थे, अंकुर आदि उनके ऊपर। वैसा संस्था गीत प्रस्तुति मृदंग पर्व घोषण मृदंग बज रहा था, गीत हो रहा था, देवी जी की स्तुति चल रही थी, लोक भाषा में भी गीत हो रहा था, मैया मैया कहकर गान चल रहा था अपने ढंग से। और इसके बाद तब इसको पूजा करके और काली जी के सामने बिल्कुल बैठाया गया वो अंतिम पूजा करने के लिए। भद्रकाल्य पूरतः उपदेश मासे उठा करके बैठाए। वैसे जब भरत जी को पूरा पता है कि क्यों बैठा रहे हैं, क्यों पूज रहे हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं, घबराहट नहीं, कुछ नहीं, इनकी अद्भुत स्थिति। तो चोरों का जो पुरोहित था वो भी एक चोर था, इसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि सब चोर थे तो चोरों में ही कोई पुरोहित होगा। जैसे मिलिट्री में कोई मिलिट्री मैन ही डॉक्टर होता है, या कोई विभाग होता है पुजारी आदि तो मिलिट्री के जवान ही होते हैं, वैसे ही चोरों में पुरोहित भी चोर था। और वह अभ्यस्त था कि एक ही प्रहार में मस्तक काट, अगर एक प्रहार में काट दिया तो माना जाएगा सफल काम रहा। तो बकरा काटने वाले भी ऐसे विंध्याचल में हैं, और उनका काम ही है बकरा काटना नवरात्र में, और एक एक प्रहार में बस छत काटते। ये सब तमोगुणी जीव है, वास्तव में सब देव से विरुद्ध चलते। तो बिशल राज पड़ी ही, बिशल राज का जो पुरोहित था चोर, वो पुरुष पशु के अस्त्रित आशय से, खून रूपी आशय से उनको तृप्त करना चाहता था भद्रकाली को, मतलब काट करके और खून रोक करके या खून उनको अर्पण करना चाहता था, भद्रकाली को अर्पण करना चाहता था। तो इसके लिए वो तलवार पीछा कर रहा था, और वो अभिमंत्रित तलवार थी। अभिमंत्रित का अर्थ देवी जी का मंत्र पढ़ करके जब उसको शाम धराया जा रहा था तो उस समय मंत्र पढ़ा जा रहा था देवी जी का। मंत्र पढ़ करके निश्चित था, निश्चितम, निश्चितम मतलब तीक्ष्ण धार वाला, और अभिमंत्रित करके और देवी का मंत्र पढ़ करके हाथ में उठाया, सावधान हो जाओ सब लोग देखो। और जो भी अपने ढंग का मंत्र होता है वो तो शब्द भी उनका बहुत बुरा लगता है जो भी बोलते हैं, तो उस तरह से बोला और इसके बाद सावधान हो गए, तो सावधान हो गए। जब भरत जी जान रहे हैं कि शरीर का एक अंग शरीर से अलग होने वाला है, मैं तो कटने वाला हूं बहुत, उनको तो भगवान का ध्यान हो रहा था शरीर का नहीं, लेकिन वे सब कार्य भद्रकाली के भवन में हो रहा तो वही काली जी की मूर्ति फट गई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवत भक्त के ब्राह्मण के तेज के सामने देवी जी की मूर्ति फट गई, उनके देह में आग लग गई, ब्रह्म तेज दम दह्य माना आग लग गई। और देवी जी प्रकट हुई और उसके तलवार को छीन करके सबसे पहले पुरोहित को मारी और जितने भी वहां गा बजा रहे थे सबको मार दिया। एक टीकाकार कहते हैं कि अगर देवी ने भगवत भक्त की रक्षा नहीं किया होता तो देवी की भी खबर भगवान ले लिया। देवता भी भगवान के भक्त की रक्षा करते हैं, उन्हें करना है, भगवान रक्षा करने नहीं आए। तो इति पेशम वृषला नाम रजस तमोह प्रकृति नाम, वास्तविक बात थी कि वे रजोगुणी थे, तमोगुणी थे, और अतिशय धन के कारण वे और उच्छृंखल हो गए थे, चोरी कर कर के बहुत धनी हो गए थे। तो धन मद रज उत्सिक्त मनसा, धन के कारण रजोगुण छा गया था और उससे बुद्धि नष्ट हो चुकी थी उनकी। तो भगवत कला वीर कुलम, वेद को भगवान की कला कहते हैं और वेद को इस जगत में धारण करते हैं ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मणों को भगवत कला वीर कहते हैं। वीर मतलब अग्रणी, वेद को पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो भगवान के कला को धारण करने वाले, वेद को धारण करने वाले एक ब्राह्मण का अपमान हो रहा था, कदर्थी कृत्य अपमान हो रहा था। उत्पथे न स्वयं बिहरता हिंसा बिहारणा, और वो जितने थे हिंसा में उनकी रुचि थी, हिंसा बिहार हिंसा करना उनके लिए आनंद की बात थी, किसी को मारना काटना खून पीना, तो हिंसा बिहारणा इस तरह से वे मनमाना आचरण कर रहे थे। और किसका वध करने जा रहे थे? ब्रह्मभूतस्य, जो देह से अतीत थे, ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पर थे, साक्षात ब्रह्मर्षि सुतस्य, और पुत्र थे एक ब्रह्मर्षि के, एक महान ब्राह्मण के पुत्र थे, निर्वैर थे, किसी के प्रति उनका वैर नहीं था, किसी को कभी दुख नहीं दिए थे, सर्वभूत सुहृद, बल्कि समस्त प्राणियों के वे सुहृद थे और सबके आत्मा सबका हित करने वाले थे। और सुनायाम अपि अनुन्मतम, वैसे कभी कभी शास्त्र में बहुत रेयर परिस्थिति में बलिदान की बात कही गई है, परंतु उसमें भी ब्राह्मण के पद की बात कभी नहीं कही गई। शास्त्र कहता है कि मनुष्यम न लभेत देते ब्राह्मणम तू कदापि न, मनुष्य की बलि कभी नहीं देनी चाहिए, कभी नहीं, और उसमें भी ब्राह्मणम तू कदापि न, ब्राह्मण के तो कभी बलि न दे। तो जो बलि देने लायक नहीं थे, सब तरह से शुभ गुणों से युक्त थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन ऐसे ब्रह्मर्षि तनय को भी वे लोग काटने जा रहे थे। तो देवी के भवन में ये हो रहा था, इसीलिए उसको देख करके ब्रह्म तेज सा अति दुर्विषहरा, भक्ति के तेज से, ब्राह्मण के तेज से भद्रकाली के देह में आग लग गई, दंदयमान इसको कहते, वो जलने लगी देवी, जैसे लगा आग लग गई, मतलब देवी पर यह बहुत भारी अपराध लग रहा था, और तुरंत प्रतिमा को फोड़ करके प्रकट हो गए। दंदयमान बपसा सहसा उच्चचाट, उच्चचाट मतलब मूर्ति को फोड़ करके और देवी प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए, और बहुत क्रोध में थी। भृषम अमर सरोसा विश्रभस विलसित भ्रकुटि बीटक कुटिल द्रंष्टा रुणक्षणा, तो भयानक बदला। भृषम अमर इस दुष्कर्म को देवी सह नहीं सके, और नहीं सहने से और क्रोध के आवेश से उनकी भ्रकुटि ऊपर चढ़ गई थी, भ्रकुटि ऊपर चढ़ गई थी, आंख बहुत भयानक लग रही थी और दांत बड़े कुटिल लग रहे थे, दांत भी प्रकट हो रहे थे, कुटिल दंष्टा, टेढ़े टेढ़े दांत और लाल लाल आंख, और इसको हम लोग हाको डाको कहते हैं, बहुत बोल रही थी अपने ढंग का देवी, बहुत तरह से आवाज कर रही थी और बहुत क्रोध में, और उस क्रोध की दशा में इदम हंतुम कामायु, ऐसा लगता था कि वे एक व्यक्ति के अपराध से सारे जगत को नष्ट कर देंगी, इतना क्रोध में थी देवी, तो भगवान की शक्ति है बहिरंगा शक्ति, वो बहुत क्रोध में थी, और ऐसा लगता था इदम हंतुम कामा, लगता था सारे जगत को नष्ट कर देंगी, और महाट्टहासम अति शरम्भेण विमुंचती, और अट्टहास कर रही थी जोर से, अट्टहास कहते हैं जोर से हंसना, और उत्पत्य उछल करके और उस तलवार को छीन ली, और जितने पापी सब वहां बैठे थे सबको काटने लगे, वो भाग नहीं सके, उत्पत्य का अर्थ है कि उछल उछल करके और काटती थी, कुछ भागने की कोशिश भी की लेकिन वो क्या भाग सकते थे, इतना देवी में फुर्ती थी कि वे भाग नहीं सके, मैं सबको काटी, और उनके गण भी प्रकट हुए, और काटे तो इन चोरों के गर्दन के कटने से गरम गरम खून की धारा निकली, और देवी के जितने भी गण थे वे सभी प्रकट होकर के खून पीने लगे, गरम गरम खून पीने लगे, और अपने पार्षदों के साथ देवी वहां पर सिरह कंदुक ली लिया, सिर का कंदुक बना करके खेलने लगे, हाथ का कंदुक नहीं, पैर से, देवी जी पैर से मार रही है, इन लोगों के सिर पर कटे हुए सिर को इधर से उधर और कई देवियां प्रकट हो गई, भूत पिशाच बैताल सब प्रकट हुए और सब मारने लगे फुटबॉल गेंद खेलने लगे वहीं पर। मतलब क्रोध में कटे हुए सिर को ही मार रहे पैर से और जगह ननर तक गाने लगे नाचने लगे, जगह मैंने गाने लगे ननर तक तो नाचने लगे, सहगण अपने पार्षदों के साथ देवी जी नाचने लगे, मद बिहेवर उच्च स्तर और खून जब ये लोग पीते थे तो जैसे शराब पीने का नशा होता है वैसे पी पी करके और फिर गेंद खेलते थे। इस तरह से वो मंदिर पूरा रक्त रंजित हो गया। इस पर प्रश्न होता है कि ननु कथम दिव्या राधिका नेमं विपरीतम फलम, आखिर बेचारे उन लोगों का क्या दोष है, वो तो अपने समय से देवी की आराधना कर रहे थे तो देवी ने ऐसा क्यों कर दिया ये प्रश्न उठता है। देवी के आराधकों को ये विपरीत फल क्यों मिला? सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि एवं एवं खलु महद अभिचारातिक्रम कारसेन आत्मने फलते। यह तो एक उदाहरण है परीक्षित। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति महान पुरुष को मारना चाहता है, उसकी हत्या करना चाहता है, तो वो जो करना चाहता है उसी की हत्या हो जाती है, आत्मने फलते। किसी महान वैष्णव या शुद्ध ब्राह्मण का कोई वध करना चाहे तो वध जो करना चाहता है वही मारा जाता है एवं एवं, ठीक इसी घटना जैसा यह नियम है। ऐसा देखा गया है इतिहास में, जैसे हम लोग भागवत में कथा है कि सुरुचि चाहती थी कि ध्रुव मर जाए वन में जाकर के, उसकी हार्दिक इच्छा थी। उसने कहा कि जाओ जाओ वन में भगवान का भजन करो और मेरे घर में जन्म लो, तब तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। लेकिन उसकी हार्दिक इच्छा ये थी कि ध्रुव मर जाए, वन में जाएगा छोटा लड़का है तो बाघ भालू खा जाएंगे मर जाएगा तो हमारा बेटा राजा होगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा, उसका बेटा वन की आग में जलकर मर गया और उसको खोजने के लिए नहीं यक्षों ने मार दिया ना, हाँ यक्षों ने मार दिया, उत्तम को यक्षों ने मार दिया और उसको खोजते हुए उसकी मां गई वन में आग लग गई, वो जलकर कुसागा। एक भक्त को मारने की का केवल संकल्प करने मात्र से दोनों मारे, बेटा के साथ सुरुचि मर गई। इस तरह के बहुत से इतिहास है। किसी भी भक्त को कोई मारना चाहता है तो वही मारा जाता है, ये सिद्धांत श्लोक सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं इस घटना पर अपना कमेंट दे रहे हैं। इस प्रकार की घटना पर कि भाई देवी के पुजारियों को क्यों देवी जी मार दी और कृष्ण भक्त की रक्षा की, आश्चर्य। ये सीखने की बात है, देवताओं की आराधना ठीक है करते हैं लेकिन कहीं गड़बड़ी हुई तो विपरीत फल हो जाएगा, भगवान ऐसा कभी नहीं करते। देवताओं के यहां पहुंचना खतरनाक भी है, गलती हो ही जाती है यार मनुष्य से, इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ इंद्र की पूजा करते थे प्रत्येक वर्ष, और एक वर्ष भगवान के कहने से पूजा नहीं किए, इसी पर इंद्र सारे ब्रज को मारने की कोशिश कर रहे थे। जो पूजा कर रहे थे उनका वे वध किया और जो उनको सता रहा था, इंद्र को सता रहा था कंस, उस कंस की राजधानी मथुरा में एक बूंद पानी नहीं बरसा, हिम्मत नहीं थी कि वहां वो पत्थर बरसाते और आंधी चल जाए मथुरा में, तो पुजारी लोग मारे जा रहे थे वो तो भगवान थे बचा लिए, नहीं तो नमो निशान मिटा दिए होते इंद्र, ये तो दशा होती। क्योंकि दूसरे देवताओं का की जो भक्ति करते हैं उनकी बुद्धि ठीक होती नहीं है, क्योंकि जो देवता है वे सत्वगुणी होते नहीं है, वो स्वयं ही रजोगुणी होते हैं, इसलिए उनका प्रभाव पुजारी पर आता है। अतः शास्त्र कहता है कि भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। और भगवान की यदि हम भक्ति करेंगे तो देवता हमारी मदद करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। देखिए देवी जी आज अपने भक्तों को काट करके विष्णु भक्त की रक्षा, अपने भक्त को मार, ये प्रमाण है इतिहास। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं एव खलु महद अभिचाराती क्रम कार स्नेह आत्मा ने फलती, पूरा पूरा अपने पर ही फलता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए, किसी भी वैष्णव को कृष्ण भक्त को मारने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वही आदमी मारा जाएगा जो मारना चाहता। यह एक नहीं हजारों हजारों घटनाएं हैं शास्त्र में इस प्रकार की। महाराज परीक्षित बड़े आश्चर्य में पड़े थे कि अहो मरण के लिए, मरण का समय आने पर भी उनको घबराहट नहीं हुई और मारने वालों के प्रति क्रोध नहीं हुआ। आश्चर्य, मारक थे मारकेशु क्रोधाभाव, मारकों पर क्रोध का अभाव और मरणे अपि अव्याकुलता, आश्चर्य आश्चर्य की बात। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नई एतद् विष्णु दत्त महदद्भुतम, हे विष्णु दत्त ये बहुत आश्चर्य नहीं है, भक्तों के विषय में आश्चर्य नहीं है। परीक्षित महाराज को विष्णु दत्त कहते हैं, विष्णु मतलब कृष्ण ने इनको ब्रह्मास्त्र से बचा करके महाराज युधिष्ठिर को दिया था राजा बनाने के, इसलिए इनका नाम हुआ विष्णु दत्त या कृष्ण दत्त। महाराज परीक्षित का नाम या विष्णु रात, भगवान ने बचा करके इनको दिया था, इसलिए विष्णुदत्त कहते हैं। तो हे विष्णुदत्त ये न इदम महदद्भुतम, क्या जब असंभ्रम स्व सिर छेदने आपतिते, अपना सिर कटने का समय आने पर भी, सिर कटने वाला और फिर भी असंभ्रम, यह भगवत भक्तों के लिए आश्चर्य की बात नहीं। किनके लिए आश्चर्य की बात नहीं है? विमुक्त देहाध्यात्म भाव सुदृढ़ हृदय ग्रंथिना, जो देह आदि में यह मैं हूं और यह मेरा है इस आत्मभाव की सुदृढ़ ग्रंथि को तोड़ चुके हैं, खोल चुके हैं, जिनके अंदर यह अज्ञान की ग्रंथि नहीं रह गई है मैं यह देह हूं। तो ऐसे भागवत परमहंसा ना, जो भागवत है परमहंस है, मतलब भगवान के भक्त परमहंस हैं, तो उनका सिर कटने का भी समय आए तो उन्हें कोई घबराहट नहीं होती, केवल जडभरत जी ही नहीं कोई भी व्यक्ति वे नहीं डरते, उन्हें कोई घबराहट नहीं होती। सर्व सत्व सुहृद आत्मना, क्योंकि वो समस्त प्राणियों के सुहृद होते हैं, सबकी आत्मा होते हैं, अपने ही समान दूसरों को समझते हैं, इसलिए क्रोध नहीं आता है उनमें। ये मारने वालों को ही अपना स्वरूप देख रहे थे, निर्भयराणा उनका किसी से वैर नहीं होता। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि अगर शरीर में आत्मबुद्धि भी हो, अहम भाव हो भी, तब भी वो नहीं मारे जाएंगे और उन्हें भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि रक्षा करने वाले भगवान। और मान लीजिए सभी भक्त भागवत परमहंस न हो, देह भाव से मुक्त न हो, देह को मैं मानते हूं, फिर भी वो नहीं मारे जाएंगे और न घबराएंगे, क्योंकि साक्षात भगवता अनिमिष बड़ा उधेना अप्रमत्तेना तस्तो भाव परिरक्षमाणाना, उनकी रक्षा साक्षात भगवान द्वारा की जाती है, भगवान रक्षा करते हैं। परिरक्षमाणाना सब तरह से भगवान रक्षा करते हैं। अनिमिष काल से काल, काल ही जिनका श्रेष्ठ आयुध है, चक्र है, तो जो काल को अपने वश में रखते हैं, काल जिनका चक्र है, वे भगवान रक्षा करते हैं। तो कोई प्रश्न करे कि आ करके रक्षा करते हैं क्या, तो कहते नहीं, तैस्तई भाव है, जहां जो वस्तु होती है उसी को प्रेरित करके रक्षा कर लेते हैं, क्योंकि सबके अंतर्जामी है, सबके भीतर है, तो भद्रकाली के भीतर भी है, किसी भी जीव के भीतर है, उसी को प्रेरित करके रक्षा कर लेंगे। तो अपने भक्त जड भरत जी की रक्षा करने के लिए आए नहीं, तैस्तई भाव है, और भद्रकाली के हृदय में ही प्रेरणा करके उन सबको मरवा दिया और भक्त की रक्षा कर। जब मनुष्य भी रिमोट कंट्रोल जानता है तो भगवान तो सबके हृदय में है, सबके हृदय में हो, कभी भी किसी की रक्षा कर लेंगे किसी भी तरह से। जो तलवार जब भरत जी के गर्दन पर चलने वाली थी वह उसकी के गर्दन को पहले काटे जो इनकी गर्दन काटना चाहता, और जिसके लिए इनका वध किया जा रहा था वही सबको मारती। इसको कहते हैं पलतई भाव, भगवान रक्षा कर लेते। इसलिए भक्तों को कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, कोई नहीं मार सकता है, भगवान रक्षा करते सब समय। और विष्णु दत्त कह करके यह भागवत कर रहे कि तुम तो गर्भ में थे, क्या तुम अपनी रक्षा कर सकते थे? यह रक्षा किस वस्तु को कहते हैं यह भी तुमको पता नहीं, लेकिन तुम्हारी रक्षा खुद ऐसे हुई है। तुम मां के गर्भ में थे और ब्रह्मास्त्र तुमको मारने वाला था, लेकिन भगवान ने रक्षा कर लिया। तुम खुद ही इसके प्रमाण हो, स्वयं प्रमाण। तो कृष्ण सब तरह से भक्तों की रक्षा करते हैं, खास करके तत्पाद मूलन अकुत कुतश्चित भयम उपसृताना भागवत परमहंसा, जो भगवान के निर्भय चरण कमलों की शरण में रहते हैं। और जो भागवत है और परमहंस है, केवल परमहंस नहीं है, ऐसे किसी भी विरक्त को परमहंस कह दिया जाता है, जो संसार को छोड़ चुका है, भोगना नहीं चाहता है तो परमहंस है। लेकिन भागवत परमहंस में और छूछे परमहंस में अंतर है, केवल परमहंस में अंतर है। भागवत परमहंसकार कृपा श्रीधर स्वामी लिखते हैं, भागवताना भगवत उपासकानाम परमहंसाना, जो भगवान के उपासक परमहंस हैं उनकी रक्षा भगवान करते हैं। बहुत से ऐसे परमहंस हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, घर द्वार छोड़ दिए, हिमालय में जा करके बैराग में रहते हैं, लेकिन भागवत नहीं। भागवत परमहंस इसको कहते हैं जो भगवान का भक्त होता है, या ऐसे भक्तों की भगवान रक्षा करते हैं। तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है परीक्षित, अपना सिर कटने का समय आने पर भी घबराहट न होना और मारने वालों के प्रति क्रोध न होना, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस प्रकार यह प्रसंग पूरा हुआ। अब इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है। जो लोग 15 में जा रहे हैं वो लोग जग जाएं, कथा आ रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। किस प्रकार जड़भरा जी देह से बिल्कुल अतीत हैं, किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, लोभ नहीं, कुछ नहीं, इन सब का वर्णन किया गया। और खास करके इस प्रसंग पर जब उनको भद्रकाली के मंदिर में ले जाया गया और प्रतिकार नहीं किए, तो महाराज परीक्षित के मन में एक प्रश्न उठा, लोगों को शंका हो सकती है। वह इस तरह से भय न होना तो एक तो बच्चा में भी देखा जाता है, एक छोटा बच्चा है, अगर उसको कोई काली जी के यहां ले जाए चाहे कहीं मारे काटे, तो बच्चा कुछ नहीं जानता है कि नहीं। मारने वाले भी गोद में उठा ले, खिलाए पिलाए तो खा लेगा, जैसे भगवान कृष्ण। तो बच्चा तो पुतने ने उठाया जहर पिलाने के लिए, लेकिन वो उठ गए तो पीने भी लगे। तो अज्ञ व्यक्ति, अज्ञ बालक भी तो इस तरह से नहीं घबराता है मरने से। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि इसी तरह से वे अज्ञ थे, बेवकूफ थे, इसीलिए नहीं समझ में आ रही थी बात और इसीलिए नहीं घबरा है, ऐसी बात नहीं है। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अज्ञ और सर्वज्ञ में अंतर दिखाने के लिए यह प्रसंग चालू किया जा रहा है। ये बालक की तरह अज्ञ नहीं थे कि हमको कोई मारने जा रहा है और करने जा रहा है, सब जानते थे, लेकिन फिर भी ये नहीं घबरा है। अच्छा, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि केवल परमहंस नहीं थे, इस संसार से विरक्त मात्र नहीं थे, एक वैष्णव थे, इनके हृदय में बहुत दया थी। ये सुहृद बार बार कहा जा रहा था है कि सबके सुहृद थे। सुहृद होने के कारण इनमें अपने भक्त को